नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9 Not 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटीफुल वेब डिजाइन। जेसन बेड की वेब डिजाइन पर केंद्रित व्यावहारिक और वैचारिक मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक कोड लिखना सिखाने वाली सामान्य किताब नहीं है, बल्कि उन दृश्य निर्णयों को समझाती है जिनसे कोई वेबसाइट सुव्यवस्थित, पठनीय और अपने उद्देश्य के अनुकूल बनती है। इसका केंद्रीय विचार है कि वेबसाइट का रूप केवल सजावट नहीं, संगठन की पहचान और संदेश का विस्तार होना चाहिए। पुस्तक लेआउट और कंपोजिशन, रंग, टेक्सचर, टाइपोग्राफी और इमेजरी जैसे मूल क्षेत्रों के माध्यम से डिजाइन सिद्धांतों को वेब माध्यम में रखती है। बेड सिद्धांत को अलग थलग नियमों की तरह पेश नहीं करते, बल्कि उसे एक वेबसाइट के विकसित होते उदाहरण से जोड़ते हैं। चित्रों, स्क्रीनशॉटों और दृश्य उदाहरणों का व्यापक प्रयोग पाठक को अंतर पहचानने में मदद देता है। चौथा संस्करण आधुनिक यूजर इंटरफेस पैटर्न, संसाधनों, एनिमेशन और इंटरैक्टिव विशेषताओं को भी ध्यान में रखता है। इसलिए यह पुस्तक खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो तकनीकी निर्माण से आगे बढ़कर दृश्य संप्रेषण की बुनियाद समझना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, लेआउट और कंपोजिशन से सूचना को स्पष्ट दृश्य क्रम देना। पुस्तक का पहला प्रमुख आधार लेआउट और कंपोजिशन है, अर्थात पृष्ठ पर सामग्री को इस तरह व्यवस्थित करना कि उपयोगकर्ता पहले यह समझ सके कि क्या महत्वपूर्ण है, फिर यह कि उसे कहां जाना है। बेयर्ड ग्रिड सिद्धांत संतुलन और तत्वों के आपसी संबंध को वेब डिजाइन के व्यावहारिक औजारों के रूप में देखते हैं। ग्रिड का अर्थ केवल समान खानों में सामग्री भरना नहीं है, उसका उद्देश्य शीर्षक, नेविगेशन, मुख्य सामग्री, चित्र और सहायक जानकारी के बीच एक स्थिर संरचनात्मक संबंध बनाना है। ऐसी संरचना पृष्ठ को बिखरने से बचाती है और अलग अलग स्क्रीन या खंडों में निरंतरता देती है। कंपोजिशन में रिक्त स्थान का महत्व भी उतना ही है जितना दृश्य तत्वों का। यदि हर क्षेत्र रंग, बॉर्डर, बटन और पार्ट से भरा हो तो उपयोगकर्ता का ध्यान किसी स्पष्ट प्राथमिकता पर टिक नहीं पाता। इसके विपरीत पर्याप्त खाली स्थान समूहों को अलग करता है और पढ़ने की गति आसान बनाता है। दृश्य संतुलन भी केवल सममिति नहीं है। आकार, रंग की तीव्रता, स्थान और दृश्य भार के जरिए असममित पृष्ठ भी स्थिर और उद्देश्यपूर्ण लग सकता है। पुस्तक का उपयोगी पक्ष यह है कि वह लेआउट को सजावटी चुनाव के बजाय सूचना की दिशा तय करने वाली प्रणाली मानती है। इससे शुरुआती डिजाइनर यह प्रश्न पूछना सीखता है कि उपयोगकर्ता सबसे पहले क्या देखेगा, क्या बाद में समझेगा और कौन सी वस्तु वास्तव में प्रमुख होनी चाहिए। दूसरा, रंग योजना को ब्रांड पहचान और उपयोगकर्ता संकेतों से जोड़ना। रंग संबंधी भाग इस धारणा को चुनौती देता है कि सुंदर रंगों का चयन केवल व्यक्तिगत पसंद का विषय है। पुस्तक रंग को वेबसाइट की पहचान, भावात्मक वातावरण और उपयोगकर्ता के लिए संकेत देने वाले माध्यम के रूप में रखती है। एक रंग योजना में मुख्य रंग, सहायक रंग और तटस्थ रंगों की भूमिकाएं अलग होती है। यदि हर रंग बराबर जोर से उपस्थित हो तो पृष्ठ में प्राथमिकता धुंधली हो सकती है। इसलिए रंगों का सीमित और क्रमबद्ध उपयोग नेविगेशन, कॉल टू एक्शन, शीर्षक तथा पृष्ठभूमि जैसे तत्वों को अलग अलग कार्य देता है। बेयर्ड रंग चक्र और रंगों के संबंधों की बुनियादी समझ पर बल देते हैं, जिससे पाठक सामंजस्यपूर्ण या नियंत्रित विरोध वाले संयोजन बना सके। समान प्रकृति के रंग शांति और एकरूपता दे सकते हैं, जबकि पूरक विरोध ध्यान खींच सकता है, लेकिन किसी संयोजन की सफलता संदर्भ से तय होती है। उदाहरण के लिए, किसी प्रमुख बटन का रंग पृष्ठभूमि और आसपास के पाठ से पर्याप्त अंतर रखे, तभी वह उपयोगकर्ता को स्पष्ट संकेत देगा। इसी तरह, संगठन की स्थापित पहचान से असंबद्ध रंग योजना वेबसाइट को आकर्षक होते हुए भी अविश्वसनीय या असंगत बना सकती है। पुस्तक की दृष्टि में रंग का अच्छा प्रयोग दो स्तरों पर काम करता है। वह पहले साइट के चरित्र को स्थिर करता है, फिर उपयोगकर्ता की दृष्टि को नियंत्रित करता है। यह विचार आज भी उपयोगी है, क्योंकि रंग पैलेट बनाने वाले डिजिटल औजार चुनाव को तेज कर सकते हैं, पर रंगों की भूमिका, विरोध और अर्थ का निर्णय डिजाइनर को ही करना पड़ता है। तीसरा, टेक्सचर, रेखाओं और आकृतियों का संयमित प्रयोग। टेक्सचर पर चर्चा पुस्तक को उन वेब डिजाइन पुस्तकों से अलग करती है जो दृश्य संरचना को केवल ग्रिड, रंग और फॉन्ट तक सीमित रखती है। यहाँ टेक्सचर में रेखाएं, आकृतियां, पैटर्न और सतह जैसा दृश्य अनुभव शामिल है। इनका काम किसी पृष्ठ को अनावश्यक रूप से सजाना नहीं, बल्कि उसमें गहराई, विभाजन, दिशा या वातावरण पैदा करना है। उदाहरण के लिए, हल्की रेखा सामग्री के समूहों को अलग कर सकती है। पृष्ठभूमि का नियंत्रित पैटर्न किसी ब्रांड का स्वभाव स्थापित कर सकता है और आकृति किसी क्षेत्र की दृश्य सीमा स्पष्ट कर सकती है। इस विषय का मुख्य व्यावहारिक सबक संयम है। बहुत तीखे पैटर्न, भारी पृष्ठभूमिया या अनेक प्रतिस्पर्धी सजावटी रूप पाठ की पठनीयता घटा सकते हैं। वे पृष्ठ को उस समय भी पुराना या अव्यवस्थित बना देते हैं जब सामग्री स्वयं अच्छी हो। इसलिए टेक्सचर को मुख्य संदेश से पीछे रहना चाहिए जब तक कि वह स्वयं किसी विशेष अनुभव का जरूरी भाग न हो। डिजिटल स्क्रीन पर यह सावधानी और बढ़ जाती है क्योंकि छोटे आकार में सूक्ष्म बनावट शोर जैसी लग सकती है। बेयर टेक्सचर को दृश्य भाषा का हिस्सा मानते हैं। मृदु बनावट अपनापन या हस्तनिर्मित भाव जगा सकती है, जबकि साफ ज्यामितीय आकृतियां अधिक औपचारिक या तकनीकी प्रभाव दे सकती है। फिर भी पुस्तक का व्यापक सिद्धांत यही रहता है कि रूप को सामग्री और पहचान की सेवा करनी चाहिए। पाठक सीखता है कि हर सजावटी तत्व के लिए कारण होना चाहिए, जैसे सामग्री का समूह बनाना, दृष्टि को दिशा देना या ब्रांड के व्यक्तित्व को सुदृढ़ करना। चौथा, वेब टाइपोग्राफी में पठनीयता, पदानुक्रम और फॉन्ट चयन। टाइपोग्राफी वाला भाग यह स्पष्ट करता है कि वेबसाइट पर अधिकांश सूचना शब्दों के रूप में ही मिलती है, इसलिए फॉन्ट का चुनाव केवल सौंदर्य का निर्णय नहीं है। एक उपयुक्त टाइपफेस साइट की आवाज और विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, पर उसकी पहली जिम्मेदारी पढ़ने में सुविधा देना है। बेयर्ड शीर्षकों, मुख्य पाठ, नेविगेशन और सहायक सूचना के बीच टाइपोग्राफिक पदानुक्रम बनाने पर ध्यान देते हैं। आकार, मोटाई, रिक्ति और विरोध के अंतर से पाठक जल्दी समझ पाता है कि पृष्ठ की शुरुआत कहाँ है, मुख्य विचार क्या है और विस्तृत जानकारी कहाँ मिलेगी। अच्छी टाइपोग्राफी में बहुत अधिक फॉन्ट परिवारों का प्रयोग सामान्यतः समस्या पैदा करता है। अलग अलग शैली वाले अनेक फॉन्ट साइट को असंगत बना सकते हैं और दृश्य पहचान कमजोर कर देते हैं। इसके बजाय सीमित चयन के भीतर स्पष्ट भूमिकाएं निर्धारित करना अधिक प्रभावी है। पंक्ति की लंबाई, पंक्ति अंतर और अक्षरों के बीच की दूरी भी पढ़ने के अनुभव को प्रभावित करते हैं। घना पाठ थकान बढ़ाता है, जबकि अत्यधिक फैला पाठ वाक्य के प्रवाह को तोड़ सकता है। वेब माध्यम में टाइपोग्राफी का एक अतिरिक्त आयाम तकनीकी उपलब्धता है। पुस्तक के संस्करणों के साथ फॉन्ट उपलब्धता और वेब तकनीक बदलती रही है, इसलिए कुछ पुराने कार्यान्वयन सुझाव समय के साथ बदल सकते हैं। फिर भी मूल सिद्धांत स्थिर है, फॉन्ट को उसके दिखने भर से नहीं चुनना चाहिए, बल्कि यह देखकर चुनना चाहिए कि वह विभिन्न आकारों में कितना स्पष्ट है, अन्य दृश्य तत्वों के साथ कैसा संबंध बनाता है और क्या वह साइट के उद्देश्य के अनुरूप स्वर पैदा करता है। अंत में इमेजरी को संदेश, संदर्भ और विश्वसनीयता का माध्यम बनाना। पुस्तक का इमेजरी संबंधी भाग वेबसाइट में चित्रों की भूमिका को व्यावहारिक ढंग से रखता है। चित्र तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं, पर उनकी उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वे सामग्री को स्पष्ट करते हैं या केवल खाली जगह भरते हैं। सही छवि किसी उत्पाद, सेवा, स्थान या समुदाय का संदर्भ तेजी से दे सकती है। गलत या सामान्य छवि साइट के दावे और उसके दृश्य प्रमाण के बीच दूरी बना देती है, इसलिए चित्र चुनने से पहले यह तय करना जरूरी है कि वह उपयोगकर्ता को कौन सी सूचना, भावना या दिशा देगा। बेयर्ड छवियां खोजने और उन्हें वेबसाइट में इस्तेमाल करने के पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि स्रोत उपयोग की अनुमति और तकनीकी तैयारी को सौंदर्य से अलग नहीं किया जा सकता। किसी आकर्षक चित्र का उपयोग तभी जिम्मेदार निर्णय है जब उसके उपयोग का अधिकार स्पष्ट हो और वह वेब प्रदर्शन के लिए उपयुक्त रूप में तैयार किया गया हो। आकार, क्रॉपिंग और गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। गलत अनुपात में काटी गई छवि विषय को कमजोर कर सकती है, जबकि बहुत भारी फाइल पृष्ठ के अनुभव को धीमा कर सकती है। इमेजरी को टाइपोग्राफी और लेआउट के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यदि चित्र का दृश्य भार शीर्षक या मुख्य कार्यवाही से अधिक हो तो वह उपयोगकर्ता की प्राथमिकता बदल सकता है। वहीं सुविचारित चित्र सामग्री को यादगार और विश्वसनीय बनाते हैं। पुस्तक का स्थायी सबक यह है कि छवि को सजावट नहीं, संचार का प्रमाण और संरचनात्मक तत्व समझा जाए। यही दृष्टि स्टॉक छवियों, उत्पाद चित्रों और संपादकीय दृश्य सामग्री सभी स्थितियों में लागू होती है। निष्कर्ष में, द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटीफुल वेब डिजाइन उन शुरुआती वेब डिजाइनरों, फ्रंट एंड सीखने वालों, छोटे व्यवसायों के लिए साइट बनाने वालों और ऐसे डेवलपरों के लिए सबसे उपयोगी है जिनकी तकनीकी क्षमता अच्छी है लेकिन दृश्य निर्णयों की भाषा अभी स्पष्ट नहीं है। यह उन्हें रंग चुनने या फॉन्ट लगाने की तैयार सूची देने के बजाय उन निर्णयों के पीछे का तर्क समझाती है। पाठक लेआउट में प्राथमिकता, रंग में भूमिका, टेक्सचर में संयम, टाइपोग्राफी में पठनीयता और इमेजरी में प्रासंगिकता को एक ही डिजाइन प्रणाली के भाग के रूप में देखना सीखता है। अनुभवी उत्पाद या विजुअल डिजाइनर के लिए इसकी बुनियादी सामग्री शायद पर्याप्त उन्नत न हो। साथ ही पुराने संस्करणों में मौजूद कुछ विशेष तकनीकी या ग्राफिक संबंधी सुझाव आज के उपकरणों और वेब मानकों से मेल न खाएं। फिर भी पुस्तक की मूल उपयोगिता बनी रहती है। क्योंकि इसका केंद्र किसी अस्थाई सॉफ्टवेयर प्रक्रिया पर नहीं दृश्य संगठन के स्थाई सिद्धांतों पर है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें या तो केवल HTML और CSS पर केंद्रित होती है या फिर अमूर्त डिजाइन सिद्धांतों को वेब के वास्तविक निर्णयों से नहीं जोड़ पाती। बेयर्ड की पुस्तक इन दोनों के बीच पुल बनाती है। विकसित होते वेबसाइट उदाहरण और भरपूर दृश्य सामग्री पाठक को सिद्धांत का परिणाम देखने देते हैं। इसी कारण यह है वेब डिजाइन की कला के लिए एक सुगम, व्यवस्थित और व्यवहारिक आधार पुस्तक के रूप में अलग पहचान रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेसन बेयर्ड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।